अगली सुबह आर्य शिवी से पहले उठ गया था। उसने शिवी को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। उसके बाद वो उस घर को देखने लगा। घर घूमते हुए आर्य बाहर आया तो उसकी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी। उसका दरवाज़ा शीशे और लकड़ी को मिलाकर बनाया गया था। शीशा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अंदर जो भी सामान था वो बाहर साफ दिखाई दे रहा था। शिवी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उसने अपने पापा को उस समय इसी रूम में देखा था। उस स्टेटमेंट पर जाऊं तो अंदर जो भी हो रहा है वो बाहर से साफ दिखाई देता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आर्य बाहर खड़ा सोच रहा था, तभी शिवी वहां आई। क्या सोच रहे हो तुम? शिवी ने उसके पास आते हुए कहा। उसने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो पाया कि आर्य की नज़र तो रूम पर थी। हाँ, उस टाइम मैं भी ठीक इसी जगह पर खड़ी थी, शिवी बोली। उसकी बात सुनकर आर्य ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और शांत लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो, इतनी अच्छी रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। किचन में कुछ है जिससे ब्रेकफास्ट बनाया जा सके? हाँ, थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं कुछ बना देती हूँ, शिवी ने कहा। मैं तुमसे काफ़ी पहले उठा था और अपना रूटीन फॉलो कर चुका हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों ही मिस्टर शुक्ला के लॉ फर्म ही जाने वाले हैं, तो साथ चलेंगे, आर्य ने जवाब दिया। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और तैयार होने चली गई। वहीं किचन में आर्य उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं इससे गुस्सा हूँ, और देखो अब इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। इसे अपनी मनमानी करनी है तो मुझे भी अपनी जिद चलानी चाहिए, फिर मैं क्यों उसकी बातें मान रहा हूँ? आर्य को अपने बर्ताव पर हैरानी हो रही थी। उसने लगभग एक घंटे में ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। उतने में शिवी भी नहाकर आ चुकी थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से शिवी ने सिंपल व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। क्या बनाया आज ब्रेकफास्ट में? अयो, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे होने वाला पति मेरे लिए अभी से ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है, शिवी मुस्कुराते हुए आर्य के पास आने लगी। उसकी बात सुनकर आर्य धीरे से मुस्कुराया। तुम कुछ भूल रही हो नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हाँ कही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। एक बार सच को सामने तो आने दो, फिर तुम अपने घुटनों पर बैठकर कान पकड़कर मुझसे सॉरी बोलोगे और शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे। ये तुम्हारी नंदिनी का वादा है तुमसे, शिवी ने थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा। बस करो अब, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ज्यादा कुछ था नहीं इसलिए मैंने नूडल्स और सैंडविच ही बनाया है, शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और वहां से मिस्टर शुक्ला के लॉ फर्म पहुंचे। उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर शुक्ला को बहुत हैरानी हो रही थी, जबकि उस वक्त सिद्धांत लॉ फर्म में मौजूद नहीं था। काम चलने की वजह से अभी तक सारा स्टाफ वेटिंग एरिया में ही अपना काम देख रहा था। सिद्धांत की एब्सेंस में शिवी उसकी चेयर पर बैठी थी तो वहीं मिस्टर शुक्ला और आर्य बातें कर रहे थे। शिवी का पूरा ध्यान उनकी बातों पर था। अच्छा मिस्टर ओबरॉय, आपने लंदन वाली ब्रांच के बारे में बताया था, मैंने उसकी ज्यादा छानबीन की नहीं है, आपको क्या लगता है इन सब में वो भी इन्वॉल्व है या नहीं? मिस्टर शुक्ला ने पूछा। नहीं, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। पहले तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन शेयर खरीदने के बाद मैंने उनकी काफ़ी मीटिंग अटेंड की थी। उस दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सब कुछ सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत पहले मैं उनके शेयर उन्हें वापस बेच चुका हूँ, आर्य ने बताया। मिस्टर शुक्ला के लैपटॉप में डिजाइनिंग दिला की लंदन ब्रांच की प्रोफाइल खुली थी। वो उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन आर्य की तरफ की और कहा, कई बार सब कुछ अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है मिस्टर ओबरॉय। दोनों ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहले ये अलग थी, बाद में अचानक एक हो गई और अब तक साथ में काम करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों एक दूसरे के कामों से अनजान हो, आर्य ने फिर थोड़ा सोचा और शिवी की तरफ देखा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है नंदिनी? तुम तो उनके साथ रहती हो ना, तुम्हें कभी उन पर डाउट नहीं हुआ? तुम किसकी बात कर रही हो और मुझे क्या पता? मुझे क्या पता कौन सी कंपनी में क्या होता है, शिवी ने लापरवाही से जवाब दिया। लाइक रियली नंदिनी? आर्य के चेहरे पर हैरानी और हंसी के मिले जुले भाव थे। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो मुझे समझ नहीं आता। अपने पापा को बचाने की बात करती हो जबकि ये तक नहीं पता कि उस रात हुआ क्या था, उन्होंने जिन पर हमला किया वो लोग कौन थे, और अब जिनके घर पर रहती हो उनके बारे में ही अनजान हो। मतलब मैं तो नील के साथ रहती हूँ। शिवी को अब हैरानी हो रही थी कि आर्य उससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। इसका कुछ नहीं हो सकता, आर्य ने सिर हिलाकर कहा। नंदिनी, तुम्हारे फादर जिस कंपनी में काम करते थे उसकी सेकेंड ब्रांच तुम्हारे स्टेप फादर की है, तुम्हें ये तक नहीं पता? तुम्हारी मॉम वहाँ काम करती है, फिर तुम उनकी कंपनी का नाम कैसे नहीं जानती? आर्य ने उसे सब कुछ बताया। मिस्टर शुक्ला उनकी बातें गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, तुमने मुझे अपना रोल मॉडल मानने से इनकार किया था ना, अच्छा हुआ तुमने ऐसा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जो लड़की मुझे अपना रोल मॉडल मानती है वो इतनी इग्नोरेंट है। मुझे सच में नहीं पता, मैं कभी उनकी कंपनी में नहीं गई। मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, मैंने थोड़े दिन ही उनके साथ घर पर बिताए थे, फिर उन्होंने गुस्से में मुझे और नील को घर से निकाल दिया। जब सिद्धांत ने मुझे पहली बार उस कंपनी का नाम बताया था तब मुझे सुना हुआ लग रहा था। तो क्या तुम मिस्टर वॉटसन को पहले से ही जानते हो? शिवी ने हैरानी से पूछा। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। पुअर गर्ल, आर्य ने उसकी तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाया और फिर वापस मिस्टर शुक्ला की तरफ देखने लगा। अजीब इत्तेफाक है ना, इसकी माँ उन दोनों इंसान से जुड़ी हुई है जो इस हादसे से बिलोंग करते हैं, कहीं उनका तो इनमें कोई हाथ नहीं, मिस्टर शुक्ला बोले। उनकी बात सुनकर शिवी को गुस्सा आया, वो उठकर उनके पास गई और चिल्लाकर कहा, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, ऐसे तो मैं भी दोनों से जुड़ी हुई हूँ, तो क्या ये सब मैंने प्लान किया है? ये आपके सामने बैठा इंसान आर्या सिंह ओबरॉय, ये भी दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है? आपके कहने का क्या मतलब है? उस रात इसने खुद ही खुद पर हमला करवाया था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसके ऐसा कहने पर आर्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। और हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं एक लॉयर हूँ, इस हिसाब से हर एक पहलू पर गौर करना मेरा काम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपनी जगह पर बैठो और अपने लॉयर के आने का वेट करो, मिस्टर शुक्ला ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप इस तरह मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं यहीं बैठूंगी और आपकी हर एक बात सुनूंगी। शिकी जबरदस्ती मिस्टर शुक्ला के पास वाली चेयर पर बैठ गई। उसके ऐसा करने पर मिस्टर शुक्ला ने लाचारी से आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये ऐसी ही है, आप अपना काम कीजिए। उसके ऐसा करने पर मिस्टर शुक्ला ने लाचारी से आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये ऐसी ही है, आप अपना काम कीजिए। शिवी उसकी बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले सिद्धांत वहां आ गया था। उसे वहां देखते ही शिवी तुरंत खड़ी हुई और उसके पास जाकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, अगर हमने यहाँ बात की तो ये हमारी बातें सुन लेंगे। बोलते हुए शिवी ने मिस्टर शुक्ला और आर्या की तरफ देखा, जैसे हमारे और कोई काम नहीं है जो हम इसकी फालतू बातें सुनेंगे, मिस्टर शुक्ला ने मुंह बनाकर कहा। जबकि आर्या ने बिना कुछ कहे शिवी और सिद्धांत को दरवाजे की तरफ देखकर बाहर निकलने का इशारा किया। सिद्धांत को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला और शिवी उसे वहां से बाहर ले गई। वो दोनों ऊपर कैंटीन एरिया में थे।
ऐसी भी क्या जल्दी लगी है तुम्हें, चलो बताओ क्या हुआ है, सिद्धांत ने वहां एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कल रात मैं वहां डिजाइनिंग विला के ऑफिस गई थी और मैंने उनकी बातें सुन ली थी। उनका कोई बिग बॉस आ रहा है, बस वो लोग उसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो किसी का मर्डर करने वाले हैं। हमें उस मर्डर को होने से रोकना है और साथ ही उन लोगों को ट्रैक करना है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ सके और उनके मुंह से सच्चाई उगलवा सके। शिवी ने एक सांस में उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें जानने के बाद सिद्धांत के चेहरे के भाव गंभीर थे। लिसन, यू आर नॉट अ सुपर हीरो, आगे से वहां मत जाना, भूल कर भी नहीं, वो लोग डेंजरस हैं। ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे पापा को बेगुनाह प्रूफ करना है, शिवी ने बेचैनी से कहा। वो तो बेगुनाह प्रूफ हो या ना हो, लेकिन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, सिद्धांत ने कहा ही था कि तभी आर्य उनकी बगल वाली चेयर पर आकर बैठा। हाँ, कोई समझाओ इस बेवकूफ लड़की को, अगर मैं नहीं आता तो अब तक वो जो मर्डर प्लान कर रहे थे वो हो चुका होता, उसने सिद्धांत की बात पर सहमति जताते हुए कहा। इसका मतलब वो लोग शिवी का ही मर्डर प्लान कर रहे थे, मुझे भी यही लग रहा है। शिवी, तुम्हें सबके सामने नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, सिद्धांत ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग तो एक दूसरे से मिले तक नहीं है, फिर मैं उनके लिए खतरा कैसी हो सकती हूँ? आई एम डैम श्योर वो मुझे जानते तक नहीं होंगे, शिवी ने जवाब दिया। तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो, क्योंकि तुमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था। तुम्हारे स्टेटमेंट का क्या असर हो सकता है तुम्हें इसका एहसास नहीं है, तो बेहतर होगा कि इनसे दूर रहो। मैं अभी तुम्हारे लंदन जाने की टिकट बुक करा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आर्या ने सख्त शब्दों में कहा। उसने अपने फोन को बाहर निकाला और तुरंत शिवी के लिए टिकट भी बुक कर दी थी। इस बार सिद्धांत ने भी आर्या को ऐसा करने से नहीं रोका। शिवी ने सिद्धांत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो सिद्धांत ने जवाब में कहा, नहीं शिवी, तुम्हें जाना होगा, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। देखो, इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस एक तुम ही बची हो जिसे पता नहीं चलता कि क्या कुछ बोल जाती हो, क्या कर जाती हो, आर्या बोला। तुम दोनों को जो कहना है कहो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है, मुंबई तुम दोनों के पापा की नहीं है, शिवी ने रूढ़ होकर कहा। वो वहां से उठकर जाने लगी, तभी आर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और वापस कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने एक बार कह दिया कि तुम यहाँ से जा रही हो, मतलब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो कि मैं खुद तुम्हें वहां छोड़कर आऊं और मिसेस वॉटसन को सब सच बताऊं, आर्या ने सीरियस होकर कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने तो मुझसे शादी तोड़ दी थी ना, अब क्यों बीच में आ रहे हो, शिवी ने गुस्से में जवाब दिया। सिद्धांत अब तक उन दोनों की बहस चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उन दोनों की बात करने के तरीके से वो समझ गया था कि अब वो एक नॉर्मल तहस नहीं रही थी। देखो, तुम दोनों शांत हो जाओ, शिवी, आर्या बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें लंदन वापस जाना चाहिए, तुम्हारा काम हो चुका है, बचा हुआ काम मेरा है, वो मैं खुद कर लूंगा, सिद्धांत ने शांति से कहा। नहीं सिद्धांत, जो रिस्क मैं उठा सकती हूँ वो तुम कभी नहीं उठाओगे, ज्यादा से ज्यादा एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लोगे और उससे सच पता लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, हमने ये पहले भी करके देख लिया, अगर वो लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मुझ तक एक ना एक दिन जरूर आएंगे, तभी सही, लेकिन हम उन्हें पकड़ सकते हैं, शिवी ने वहां से जाने से मना कर दिया। तो वहीं उनकी बातें सुनकर आर्या का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। तो इसके लिए हम तुम्हें बलि का बकरा बनाकर उन लोगों के आगे डाल दें जो कुछ भी कर सकते हैं,
देखो नंदिनी, मेरा टेंपर हाई मत करो। तुम यहाँ से जा रही हो, मेरे इस डिसीजन को तुम भी नहीं बदल सकती हो। आर्या ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। उसने शिवी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। शिवी ने छुड़ाने की कोशिश भी की और सिद्धांत से भी हेल्प मांगी, लेकिन सिद्धांत ने इस बार बीच में कुछ नहीं कहा। वो भी जानता था आर्या का तरीका जरूर गलत है, लेकिन वो जो कर रहा था वो सही है। इस वक्त शिवी का वहां से जाना जरूरी था।